ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आज अंतर मंत्रालय समिति राज्य का दौरा करेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि इस समिति में कृषि, सड़क परिवहन और राजमार्ग, जल शक्ति, ऊर्जा और वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। श्री मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री लगातार सिक्किम के मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं। सिक्किम में इस महीने की 4 तारीख को तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है और 81 लोग लापता हैं। मृतकों में थलसेना के 9 जवान भी शामिल हैं। वस्तु और सेवा कर परिषद ने इस वर्ष मार्च तक जारी मांग आदेशों के संबंध में अपील दाखिल करने की तारीख 31 जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दी है। ये फैसला कल जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक में लिया गया। जीएसटी कानून के अनुसार सामान्यतः कर आकलन आदेश के विरुद्ध ऐसी अपील आदेश जारी होने के 3 माह के भीतर दायर करनी होती है, जिसे अधिकतम 1 माह तक बढ़ाया जा सकता है। परिषद ने जीएसटी पंजीकृत कारोबारों को मौजूदा 10% के स्थान पर 12.5% की कर मांग के विरुद्ध याचिका दायर करने के लिए अतिरिक्त समय देने का निर्णय भी लिया है। वायुसेना आज अपनी 91वीं वर्षगांठ मना रही है। इस अवसर पर वायुसेना उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में बमरौली वायुसेना केंद्र में शानदार परेड का आयोजन कर रही है और आयुध डिपो के पास संगम इलाके में हवाई करतब दिखाए जा रहे हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रही हैं। राज्य के उद्योग विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, थलसेना प्रमुख जनरल चौहान और मध्य हवाई कमान के जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग एयर मार्शल आरजी के कपूर भी उपस्थित हैं। वायुसेना ने आज अपना नया प्रतीक चिन्ह जारी किया। पहली बार महिला अग्निवीरों की बटालियन को भी परेड में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस पर वायुसेना कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वायुसेना नई ऊंचाइयों को छू रही है। उन्होंने कहा कि हमारी वायुसेना चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहती है और देश को इस पर गर्व है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि वायुसेना के बहादुर पुरूष और महिला कर्मी हवाई क्षेत्र की निगरानी कर देश की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को अपने वायुसेना कर्मियों के शौर्य, समर्पण और निष्ठा पर गर्व है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि वायुसेना की सेवा और बलिदान के कारण ही हमारा हवाई क्षेत्र सुरक्षित है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में 1182 पूर्व आदिवासी उग्रवादियों में से प्रत्येक को 4-4 लाख रुपए का चेक सौंपेंगे। ये उग्रवादी 5 संगठनों से जुड़े हुए हैं। ये संगठन हैं आदिवासी कोबरा मिलिट्री ऑफ असम, ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, बिरसा कमांडो फोर्स, आदिवासी पीपल्स आर्मी और संथाल टाइगर फोर्स। इन उग्रवादियों ने इस वर्ष जुलाई में अपने हथियार सौंप दिए थे। आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों में से 453 उग्रवादी आदिवासी कोबरा मिलिट्री ऑफ असम के हैं। लद्दाख में लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद करगिल चुनाव के लिए मतगणना चल रही है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद लद्दाख में ये पहला चुनाव था। 4 अक्टूबर के चुनाव में 77% से अधिक मतदान हुआ था। इस चुनाव में परिषद की 26 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन से है। मतगणना से 85 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। हमास के हमलों के जवाब में इजरायली सेना ने ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन शुरू किया है। इजरायल में हमास के हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 300 से अधिक हो गई है और 1500 लोग घायल हैं। इजरायली सेना ने गजा पट्टी में हमास लड़ाकों के 17 परिसरों तथा 4 ऑपरेशनल कमांड केंद्रों को निशाना बनाया है, जिनमें 230 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने हमास की कड़ी निंदा करते हुए युद्ध की घोषणा की है। हमास के हमले के बाद फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने रामलल्ला में रह रहे भारतीय नागरिकों से आपात स्थिति में संपर्क करने को कहा है। कार्यालय ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। नंबर है 0592916418। व्हाट्सएप नंबर है 9705929614। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।